साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पाथुकर। आज विश्व चिंतन दिवस के अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपला नालानवार से स्काउट प्रभारी एवं ब्लॉक सचिव राजेंद्र सरवड़े सर हमसे रूबरू हो रहे। नमस्कार सर जी।
नमस्कार सर। नमस्कार
सर जी, जैसा कि आज विश्व चिंतन दिवस है तो हम आपसे जानना चाह रहे कि आज ही के दिन यह विश्व चिंतन दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है?
जी, मैं राजेंद्र सरवरे, मैं स्काउट गाइड के जन्मदाता लॉर्ड बेडेन पावेल के जन्मदिन को विश्व चिंतन दिवस स्काउट गाइड के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें छात्रों में परोपकार की भावना होती है। वह विशेष प्रकृति प्रेमी होता है। प्रत्येक व्यक्तियों में परोपकार की भावना लाने का प्रेरणादायी कार्य स्काउट गाइड की ओर से किया जाता है। विद्यालयों में पेड़ पौधे लगाना, पशु पक्षियों की देखभाल कर अपने अंदर सेवा भाव लाना और आत्म अनुशासन विकसित करने का कार्य किया जाता है। लॉर्ड बेडेन पावेल, जो विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी शैक्षिक आंदोलन स्काउटिंग के संस्थापक को जगत में सदैव याद किया जाता है, और आज 22 फरवरी है, जो लॉर्ड बेडेन पावेल की जयंती 22 फरवरी को मनाई जाती है, क्योंकि इनका जन्म 22 फरवरी 1857 को इंग्लैंड में हुआ था और इनको हम बीपी के नाम से जानते हैं। इन्होंने स्काउट गाइड की स्थापना की, स्काउट गाइड को मान्यता दिलाई, इसी वजह से इनका यह दिन बड़े उत्साह के साथ पूरे विश्व में चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सर जी, जैसा कि आपने विश्व चिंतन दिवस के संबंध में
जी
आपने बताया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्काउट गाइड के माध्यम से वर्षभर आप क्या क्या गतिविधियां आयोजित करते हो और सौंसर विकास खंड के अंतर्गत ऐसी कितनी यूनिट स्काउट गाइड की है जिसके माध्यम से गतिविधियों का संचालन होता है?
जी, पूरे सौसर विकास खंड में हमारे 30 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय है, और हर विद्यालय में हमारे स्काउट गाइड का यूनिट रन करता है, और हमने स्काउट गाइड में एक सेवाभावी भावना लाने के लिए यहाँ पर एक कैंप का आयोजन भी किया था सौसर में, जिसमें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में विद्यालय के अंतर्गत जो हमारे स्काउट गाइड यूनिट है उनमें से 5-5 बच्चों को हमने यहाँ लाकर प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण के माध्यम से हमने उन बच्चों को तैयार किया। उन बच्चे अपने विद्यालय में जाके अपने यूनिट के साथ सेवा भाव का कार्य करें, एक दूसरों की मदद करें, हमारे परिवार में सामंजस्य बनाए और भी समाज के अंदर जो सेवा कार्य होते हैं वो उनके माध्यम से करवाए। हमारा विद्यालय जो है जून में चालू होता है, तो उसमें हमारे स्काउट गाइड की विशेष भूमिका होती है। स्काउट गाइड के द्वारा जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है, पेड़ पौधे लगाने का कार्य, स्वच्छता का कार्य, और हम वहाँ पे छोटी छोटी टोलियां बनाकर उनको कार्य सौंप देते हैं और पूरी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती है। वह जिम्मेदारी से हर उसका जो लीडर होता है वो पूरी देखभाल करता है और बारी बारी सबको नेतृत्व प्रदान करता है। इसमें सभी स्काउट और गाइडर हमारे सजग होकर विद्यालय में कार्य करते हैं और पूरी हमारी कार्य की रिपोर्टिंग करते हैं। इस प्रकार से उनमें एक नेतृत्व क्षमता का विकास भी होता है और सहजता से वो अपने विद्यालय में कार्य करते हैं।
सर जी, जैसा कि आपके बताए अनुसार स्काउट गाइड व्यक्तित्व विकास के मुद्दों पर काम करता है
जी।
और चूंकि आज 22 फरवरी अर्थात विश्व चिंतन दिवस है, और जब बात चिंतन की होती है तो बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन लाने के लिए उन्हें आप आज के इस अवसर पर क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि बच्चे कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे से सफलता हासिल कर सकें।
स्वाभाविक है, परीक्षा के दिन जैसे ही नजदीक आते हैं तो हमारे छात्र स्वयं में एक तनाव महसूस करते हैं, और तनाव तो किसी भी परीक्षा के नाम से होना स्वाभाविक भी है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप न केवल परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सकते हैं, साथ ही तनाव को भी दूर कर सकते हैं, बशर्ते उनमें एक टाइमिंग का आयोजन करना होता है। यदि सभी छात्र एक अपना निश्चित टाइम टेबल बनाए, और पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका भी है कि टाइम टेबल बनाए और यहाँ पहले ही तय कर ले कि आपको कब क्या और कितना पढ़ना है, चाहे तो वो हर आधे घंटा एक घंटे में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेकर इसको पढ़ाई के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। दोबारा जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो बेहतर भी पढ़ाई कर सकते, ये कई बार में ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। यदि एक बार में ज्यादा पढ़ाई करते हैं अपन तो उसमें हमारी जितनी भी बातें पढ़ी होती है ना वो दिमाग से निकल जाती है, तो यह बेहतर है कि हम एक बार में ज्यादा ना पढ़ने की कोशिश करें, पहले कठिन विषयों का अध्ययन कर ले, उसके बाद आसान चीजों को पढ़े, धीरे धीरे पढ़ाई का समय बढ़ाए, लेकिन बीच में ब्रेक जरूर ले। यदि टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई पूरी होगी तो सभी विषय बराबर ध्यान दे पाएंगे।
सर जी, जैसा कि आपने छात्रों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और पिछले एक दो वर्ष कोविड काल की भी रहे, इससे कमजोर बच्चे रहे, तो इसको लेकर आपके माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से क्या विशेष तैयारियां शाला स्तर पर की जा रही है?
इसमें तो सबसे पहले जो विद्यालय में कक्षा के अंतर्गत जो कमजोर छात्र होते हैं उनका चिन्हांकन किया जाता है, ऐसे छात्रों को हम रेमेडियल कक्षा के माध्यम से एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उनकी जो कमी है उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं, और विद्यालय के समय के अतिरिक्त उनको समय देकर उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, ताकि उन बच्चों में जो कॉम्पिटिटिव जो छात्र होते हैं उनके कम से कम बराबरी में आने का प्रयास वो छात्र कर सके।
ये तो बात हो गई आपके विद्यालय स्थल की, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर से इसके लिए और कुछ विशेष व्यवस्था की गई है, जैसे कोई चेट वगैरह और कुछ?
जैसे ब्लॉक लेवल से भी हमारे विषय विशेषज्ञ होते हैं, वो शाला स्तर पर या संकुल स्तर पर ऐसा आयोजन करके विशेष विषय विशेषज्ञ जो शिक्षक होते हैं उनके माध्यम से भी उनको गाइड किया जाता है, और जो कमी आती है छात्रों में जिसके टॉपिक को पढ़ने में कठिनाइयां महसूस करते हैं, इन कठिनाइयों को भी हम उन विषय विशेषज्ञों के माध्यम से उनको मार्गदर्शन देते हैं ताकि उनकी जो कठिनाई है वो दूर हो सके।
सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ब्लॉक स्तर पर जन शिक्षकों की नियुक्ति है
जी।
यह जन शिक्षक जो है नियुक्त ब्लॉक स्तर पर, इनका छात्रों के लिए कितना ये मिल पा रहा है सहयोग? जब ये अपने भ्रमण पर निकलते तो क्या यह छात्रों को आगामी परीक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देते हैं या नहीं, इनका सहयोग मिल रहा है या नहीं?
जैसे कि जनपद शिक्षा केंद्र ब्लॉक स्तर पर होता है, और जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत जो जन शिक्षक के दायित्व होते हैं वो कक्षा 1 से 8 तक के होते हैं, और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में इनकी मॉनिटरिंग नहीं होती, केवल ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्य करते हैं और 1 से 8 तक के उनकी मॉनिटरिंग होती है, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के लिए इनका कोई विशेष योगदान नहीं होता।
यह सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है कि कई शालाओं में एक शाला एक परिसर है जिसमें पहली से लेकर 12वीं तक शाला है, और जहां पहली से लेकर 8वीं तक शाला भी उस एक शाला एक परिसर में सम्मिलित होती है।
हाँ,
क्योंकि जनशिक्षक जब मिडिल शाला माध्यमिक शाला में जाते हैं भ्रमण, और चूंकि इस वर्ष 8वीं बोर्ड की परीक्षा है ऐसा सुनने में आया है, तो क्या इनका 8वीं के विद्यार्थियों को कुछ लाभ मिल पा रहा है या नहीं?
वैसे जन शिक्षक मॉनिटरिंग करते हैं और फीडबैक भी समय समय पर लेते हैं, लेकिन इनका जो मार्गदर्शन है केवल 1 से 8 तक के लिए ही मिलता है। जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के जो छात्र है उनको नहीं मिल पाता।
चलो सर आपसे एक अंतिम प्रश्न
जी,
क्योंकि आज 22 फरवरी अर्थात चिंतन दिवस है और चिंतन दिवस के अवसर पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने विद्यार्थी के लिए तो टिप्स दे दी है, आप विद्यार्थियों के पालकों से क्या आशा रखते हैं कि वो बच्चों को किस तरह कन्वेंस करें, किस तरह सहयोग हो उनका?
बच्चों को पेरेंट्स का सहयोग मिलना चाहिए। इस संबंध में हम शिक्षक पालक संघ की बैठक आयोजित करते हैं और बैठक में उन सभी छात्रों के कमजोरियों को हम चिन्हांकित करते हैं। उन चिन्हांकित किए हुए छात्रों के पेरेंट्स को जब वो बैठक में आते हैं तो उनको ये बताते हैं कि इन बच्चों में क्या कमी है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो पेरेंट्स बच्चों की कमी बताते हैं या बच्चा अपने पेरेंट्स की भी कमी बताते हैं, जैसे काम में लगा लेना, उनको परीक्षा पढ़ाई के लिए समय न देना, इस प्रकार की कमियों को आपसी सामंजस्य बनाकर हम कार्य करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने विश्व मानसिक विश्व चिंतन दिवस पर उपस्थित होकर आज महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, क्योंकि शासन द्वारा एक शाला एक परिसर भी किए गए और जहां पहली से लेकर 12वीं तक शालाएं लगती है और आपके माध्यम से यह जो टिप्स है वो कक्षा 10वीं 12वीं नहीं अपितु कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए भी लाभप्रद सिद्ध होंगे, इसी आशाओं के साथ पुनः एक बार आपका धन्यवाद।
बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सर, आपने हमें यह अवसर प्रदान किया।
धन्यवाद।